97 कहानी ए जिंदगी तुझसे, लेखिका कुसुम भट्ट। इस कहानी में कथ की ताजगी और भाषा के अनगढ़पन के जरिए अपने समय की बदलती अवस्थाओं की शिनाख्त की गई है। स्त्री जीवन की टूटन घुटन, निराशा, उदासी और खामोशी के बीच मनुष्यता का शंखनाद करती हुई इस कहानी में स्त्री का आवेग खुलकर फूटा है। संवेदना के कई स्तरों का संस्पर्श करती यह कहानी माँ बेटी के बीच चलते संवादों के जरिए आज के जटिल होते यथार्थ की भीतरी परतों को खुरच कर स्त्री मन की छटपटाहट को पूरे आवेश के साथ व्यक्त करती है। जब तारों की रोशनी का स्रोत सूख जाएगा, हम देंगे रोशनी रातों को। जब हवा पत्थर में बदल जाएगी, हम हवा को चलाएंगे। ज्वी ग्नेव हरबन। माँ कहानी सुना रही थी। दिसंबर की सर्द रात तारकोल सा गाढ़ा हो रहा था, अमावस का अंधेरा। मसूरी की पहाड़ियों पर झप झप रुई के फाहे सी बर्फ गिर रही थी। पहाड़ी की दूसरी तरफ तलहटी में बसा छोटा सा गांव बर्फ की चादर ओढ़े पीली मरियल रोशनी में ऊँगता नींद के अंधेरे में प्रवेश करने को आमादा था। चारपाइयों पर मोटी रजाइयों के बीच पीठ टिकाए गांववासी शी शी ठंड से ठिठुर कर किसी तरह देहों को गर्मी देने में जुटे थे कि एकाएक बाघ की दहाड़ सुनकर कांप उठे। घने जंगल के बीचों बीच बसा गांव विकास के नक्शे पर नहीं चढ़ा था। कांपते हाथों ने मंद मंद जलती लालटेन और चिमनियां बुझा दी। बाघ किसी गोठ में जानवरों के रहने का स्थान घुसेगा, उठा लेगा कोई भेड़ व बकरी। निशब्द सन्नाटे में कुत्ता भौंक रहा था जोरों से, भौं भौं। गोया लड़ लेगा युद्ध बाघ से, तोड़ देगा उसकी हड्डी पसली, धराशायी कर देगा। युद्ध में मनाएगा जीत का जश्न। सभी जानते थे बाघ का घर जंगल ही होता है। वह जंगल का राजा है, डराना उसका कर्म है, डरना मनुष्य का धर्म। डरो और मरो अथवा मुकाबला करो। देश आजाद हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन गांधी जी की आवाज़ का जादू पहाड़ों में बरकरार था। वृद्धों, स्वतंत्रता सेनानियों के कानों में उनकी आवाज़ हर पल गूंजा करती। उसे वे चौपालों पर बैठकर प्रत्येक गांववासी के मन मस्तिष्क में उड़ेला करते। दिन भर देह मन मस्तिष्क थकी स्त्रियों को बिस्तर पर लेटते ही बेटियां कहानी सुनाने की जिद पकड़े माँ को सोने नहीं देती थीं। पृष्ठ 98। इसी जिद के तहत उषा की माँ अपनी इकलौती बेटी को नई कहानी सुनाने जा रही थी। जंगल के राजा की चेतावनी के बावजूद दुबके रहो गांव वासियों, अंधेरे में गायब कर दो खुद को। रोशनी में तुम्हारी मांस गंध को पीता मैं, हो न जाऊं आदमखोर। कल रात भी अधूरी रह गई थी कहानी। माँ आज भी थकी हुई थी। थकान माँ को लालटेन बुझाने के लिए प्रेरित कर रही थी। बिटिया माँ की नींद को अपनी नन्ही मुट्ठी में भींचे माँ की खुशबू पीते हुए पूछ रही थी, तो फिर क्या हुआ माँ? सो रही थी राजकुमारी। 100 साल तक गहरी नींद। दो काली चमकीली नन्ही आंखों की पुतलियों में उग आया है दृश्य। स्वर्ण जड़ित पलंग पर सोई खूबसूरत राजकुमारी, माथे पर स्वर्ण मुकुट, कमर पर करधनी, गांव में पायल, गले में नौलखा, हार नाक में हीरे की लौंग। दृश्य में खोई रही लड़की की माँ पहुंच गई नींद के घने जंगल में, सपनों की हरी पत्तियां बटोरने। चिड़ियों की चह चह सुनने माँ उस पार जाना चाहती थी। बीच में नदी थी, माँ से नदी पार नहीं हो पा रही थी। माँ के गले से घर घर आवाज आ रही थी। बेटी थी कि माँ की देह हिला रही थी। गोया माँ पेड़ की टहनी हो जिसके हिलने से कहानियाँ झरने लगती हों झर झर। लड़की के सिरहाने छोटी सी खिड़की थी। आसमान से एक नन्हा सा तारा लड़की के पास आने को मचल रहा था। लड़की उकड़ू लेटी और गालों में दोनों हथेलियां देखने लगी। एक टुकड़ा आसमान का अंधेरा छंट जाना, तारे की रोशनी से सिर्फ तारा टूटना चाहता था। लड़की की हथेली के लिए बाघ का डुगरना, कुत्ते का भौंकना बंद हो चुका था। दोनों ही थक हार कर सो चुके थे। पिछले सप्ताह माँ ने जो कहानी सुनाई थी उसके रंग लड़की की हथेली में अभी भी झिलमिला रहे थे। लड़की एक साथ दो दृश्यों में बट रही थी। कहानी का नायक नीली चमकीली तारों भरी रात में पुष्पक विमान से उतर रहा था धरती पर। पत्थर हुई एक स्त्री को सजीव करने, माँ ने कहा था अंधेरी रात में तारे उसे मार्ग दिखा रहे थे। उसकी हथेली पर एक चमकीला तारा था जिसे वह पत्थर हुई स्त्री की हथेली पर रखना चाहता था। तारे की रोशनी से मार्ग नहीं दिखता ठीक से। लड़की नन्हे दिमाग की गुठलियां खोल रही थी। आकाश का देवता धरती पर आ रहा है तो उसके हाथ में चंद्रमा होना चाहिए। अमावस के अंधेरे में चांद कहाँ से होगा? गुड़िया माँ ने हल्की चपत मारी थी। बुद्धू तो सूरज होगा ना माँ? लड़की ने जिज्ञासा के पंख खोले। सूरज? माँ की आंखें चौड़ी हो गई थीं। लालटेन की रोशनी में लड़की ने माँ की आंखें फैलते देखा था। पट जैसे अलसुबह कली से फूटता है फूल। सूरज सूरज को हथेली में थामे स्वयं सृष्टि निर्माता भी नहीं उतर सकता धरती पर। माँ ने स्नेहिल हथेली से सहलाया उसका सिर। सूरज के पास इतना ताप होता है बच्ची कि राख हो जाना होता है पल भर में सब कुछ। अच्छा, कक्षा 3 में पढ़ने वाली उषा को माँ की कहानी का सच पच नहीं रहा था। तपाक से बोली, तो कुंती के पास कैसे आए थे सूरज? माँ क्या जवाब दे कुछ नहीं सूझा। उजबक बनी रही। तुम अपनी बहन जी से पूछना बाकी की कथा। सो गई थी माँ। कहानी अधूरी ही रह गई थी। आज भी उसने छोटी सी खिड़की पर नन्ही हथेली फैला दी। मेरे प्यारे तारे, मेरी माँ को नींद से जगा दो, उतर आओ मेरी हथेली पर। लड़की ने आंखें बंद की। तारा उसकी हथेली पर टिमटिमाने लगा। उसने तारे को छुआया माँ की आंखों पर। माँ बदहवास उठ बैठी। क्या करती है लड़की, सोई नहीं अब तक? माँ की एक नींद पूरी हो चुकी थी। पहले राजकुमारी की कहानी पूरी सुनाओ। जिद्दी लड़की माँ की आंखों में तारा खोजने लगी। तारा माँ की आंखें खोलकर अपनी जगह वापस चला आया था। लड़की ने गर्दन उचकाकर देखा। तारे की चमक उसके भीतर उतरने लगी थी। माँ 100 साल तक सोई राजकुमारी को जगाने कोई नहीं आया महल में? माँ ने लड़की को अपने पास खींच लिया। वही तो सुना रही हूँ। 7 समुद्र पार एक छोटा सा राज्य था। उसका राजकुमार जब नींद में होता तो उसे एक सपना बार बार आता था। महल में सोई राजकुमारी का सपना। लड़की कालखंडों को लांघती जा पहुंची। दृश्य के भीतर 7 समुद्र पार राजकुमार के पास। सपना तो आ गया तुम्हारे पास ओ निद से भरे राजकुमार। अब आगे क्या करने का इरादा है? राजकुमार अकबका कर उठ बैठा। भीनी भीनी सुगंध उसके पास उतरने लगी। वह तलवार पैनी करने लगा। अस्तबल से अपना घोड़ा निकाला। चल पड़ा सुगंध के पीछे। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों झाड़ियों को काट कर रास्ता बनाता। लड़की चल रही है राजकुमार के पीछे। खोज पाओगे उसे? लड़की अपनी कला के रंग से रंग रही थी कहानी। राजकुमारी पत्थर हो चुकी थी जैसे कि अहिल्या। आखिर मिल ही गया राजकुमार को सपने वाली राजकुमारी का पता। सीधे चलकर राजकुमारी के कमरे में गया। पलंग पर बेसुध सो रही राजकुमारी को देखता रहा कुछ देर। राजकुमारी जीवित भी है या? राजकुमार ने राजकुमारी के माथे पर हथेली रखी। चौंक कर राजकुमारी ने आंखें खोल दी। नींद के बाहर। प्यास, पानी, पानी, दो पानी। प्यास, काले आसमान पर पंछी सूरज में चीख रही है। कोई आकृति नुकीली चोंच से खोद रही है आत्मा की तली। हाय, यह कैसी भयावह प्यास है। 7 सागरों का जल निगलने की इच्छा लिए है। तिड़क रहा है गला। गोया जेठ की आग से समूची धरती पर पड़ गई हो दरारें। हाथ बढ़ाती हूँ। हाथ में कुछ गरम गरम क्यों लग रहा है? भुरभुरी रेत से भर गई है हथेली। पानी के बदले रेत। कहाँ चला गया वह तांबे का लोटा? बदहवास उठ बैठती हूँ। टटोलती हैं उंगलियां। रेत ही रेत चारों तरफ। क्या मैं शुतुरमुर्ग हूँ? रेती में धसाए रहूँ गर्दन? आंखें खोलती हूँ। धूल गिर रही आंखों पर। आगे बढ़ती हूँ। रेत के टीले। आंखें धोखा खा रही हैं। या सपना है बुरा सपना? नहीं, सपना तो बिल्कुल नहीं, यथार्थ है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। पृष्ठ 99। पर मेरे नीचे गद्दा था, मोटा गद्दा, पीठ को आराम देता, मीठी मीठी नींद देता। रेत के कछार पर किसने डाल दिया मुझे? समूची शक्ति ने शक्ति से खींच रखी है। प्राची, माँ, ओ माँ, पापा, ओ पापा। सन्नाटा है चारों ओर। आवाजें लौट कर वापस आने लगीं। अचानक अंधड़ आने लगा। रेत के टीलों से उड़कर रेत आंखों में, मुंह नाक में घुसने लगी। प्राची भागना चाहती है लेकिन जिस्म में इतनी सी ताकत भी नहीं बची कि घिसट के पांव को थोड़ा आगे ले चले। माँ, रेत में ही निकल जाएंगे प्राण। जीवन के अंतिम क्षण में एक घूंट, बस एक घूंट पानी की दरकार है। इसके सिवा ऐ जिंदगी तुझसे और क्या चाहा था हमने। आंखों से सूखा नमक गिर रहा है, पानी सूख गया है आंखों से भी। एक बार कोशिश करती है प्राची, पुनः पूरी ताकत से उठाती है दे, दरवाजे की सिटकनी, खोलने बढ़ाती है हाथ। रेत का एक टीला गिरता है ऊपर, दब रही है उसी में जीवन का अंतिम क्षण। इस तरह भी आनी थी मृत्यु? नहीं, अभी तो मैंने जीवन की रेखा भी नहीं, मैं मर कैसे सकती हूँ। पूरी ताकत से रेत को ठेलती है, दौड़ती है बाहर, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर गिर रही है। वहीं आगे को क्यों नहीं जा रहा है यह रास्ता? एकाएक दो लंबे हाथ बढ़ते हैं, नोच लेना चाहते हैं उसकी चमड़ी, लंबे नाखून गड़ते हैं पीठ पर, फिर एक नाखून नाभि पर, दांत गले पर पड़ गया है, खून चूसा जा रहा है। हे ईश्वर, क्या मैं सचमुच मर रही हूँ? जीना चाहती हूँ मैं, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाई हूँ अभी। मुझे बचा लो, अपने वास्ते मुझे बचा लो ईश्वर। करुण प्रार्थना में पिघलती ईश्वर की ताप को छाती में महसूस करती, एक हाथ से पुरजोर धक्का देकर उस दैत्याकार परछाई को धकेलने में समर्थ हो गई। अब भाग रही है प्राची, हवा में पंख लग गए हैं, परछाई पीछे दौड़ रही है पकड़ने उसकी देह। वह गरम गरम रेत में नंगे पांव लहूलुहान दौड़ते जा रही है अज्ञात दिशा को। रेत में खून की लकीरें बनती जा रही हैं, जिन्हें चाटती हुई परछाई दौड़ रही है पीछे। मीलों दूर आ गई है प्राची, लहूलुहान देह गिरने ही वाली है लड़खड़ा कर। मृत्यु का भयावह अट्ठहास, हा, कहाँ जाएगी भागकर? हाथ लंबा होता जा रहा है, उसी अनुपात में नाखून और दांत भी। इसी तरह अंत होना था इस जीवन का। एक घूंट पानी, सूखे पपड़ियाए होठों पर जीव फेरती है, लड़खड़ाते हुए भी क्या पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रही है? पानी, उषा, प्राची, प्राची, उषा, माँ, पापा, शोभा दी, तीनों के हाथ उसको झकझोर रहे हैं। बदहवास, क्या हुआ? तू चीखी क्यों? माँ ने उसके माथे का छलकता पसीना पोछा धोती के पल्लू से। सपना देखा क्या? उस बदहवास उठ बैठी, बहुत बुरा सपना था माँ, सपना था या कि वही सच था? प्यास के मारे मरने वाली थी मैं, एक घूंट पानी नहीं था कहीं। माँ के माथे पर एक रेखा और बढ़ गई, पर पानी तो यही था उषा, तेरे सिरहाने देखा। माँ ने हाथ बढ़ाकर तांबे का पानी भरा लोटा उठाया। प्राची का चेहरा खिड़की से आते चैत की धूप के टुकड़े में हल्के हल्के कांपने लगा। पानी कहीं नहीं था माँ, रेत ही रेत था, सिर्फ अभी भी चिपकी है उंगलियों पर। प्राची माँ की ओर हाथ बढ़ाते हुए अंगूठे से उंगलियां मसलने लगी। माँ ने पापा की ओर देखा, दोनों की आंखें एक बिंदु पर स्थिर हो गईं। चिंतित पापा बाहर लपके, माँ रसोई का बहाना कर पापा के पीछे, उषा के पापा, सच सच बताना डॉक्टर को, सब कुछ सच सच, मुझे अपनी चिड़िया सी चहकती बेटी चाहिए। माँ ने नम आंखें पोंछ दी धोती के पल्लू से और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। प्राची के पास बैठी शोभा उसका माथा सहलाने लगी। मुझे भी जाना होगा प्राची, 4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी तुझे देखने, कल तू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो मैं भी अपनी हाजिरी दे आऊं। शोभा ने प्रश्नवाचक आंखें टिका दी प्राची के पीले पड़ते चेहरे पर। वह इंटर कॉलेज में मनोविज्ञान की लेक्चरर थी, उसने अपने मामा यानी कि प्राची के घर रहकर बीएड किया था। जहाँ शोभा अपनी खुशहाल गृहस्थी और नौकरी में मस्त थी, वहीं प्राची अपने 5 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई थी। प्राची अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, पापा ब्लॉक बीडीओ के पद पर थे, शहर में अपना घर था, पापा के ट्रांसफर आर्डर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए आते, घर में माँ अकेली थी। कुछ महीनों से प्राची माँ के घर थी, शोभा ही उसकी हालत को देखते उसे कानपुर से यहाँ ले आई थी। 3 बार प्राची का गर्भपात हो चुका था, उसे देखकर लगता था वह वर्षों निर्वासन बिता कर आई है या उसे काले पानी की सजा हो गई थी। लेकिन मुझे हुआ क्या है शोभा दी? प्राची का चेहरा और पीला पड़ गया। क्या मैं सचमुच? प्राची की आंखें गर्म पानी से भरने लगी। मैं पागल, इन 3 अक्षरों को उसकी जीभ लाख कोशिश करते हुए भी उच्चारण नहीं कर पाई। इन 3 अक्षरों में गोया प्राची ने 3 युगों की यात्रा कर ली। माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई और वापस चली गई रसोई में। शोभा ने चाय का घूंट भरा। तू अजीब अश्लील बातें करती है प्राची, जिसे सुनकर हम शर्म से गड़ जाते हैं। इसी बिना पर वे डाइवोर्स मांग रहे हैं। तेरी चीख सुनकर पड़ोसी भी सहम जाते हैं। प्राची उठकर टुकर देखने लगी शोभा दी की आंखों में। क्या अश्लील कहती हूँ मैं? यही कि मुझे राक्षस आ रहा है, रोज चूसता है मेरा खून। और यही भी कि रात और दिन लगातार कोई मुझसे बलात्कार कर रहा है। मेरी टांगों पर हमेशा चावल की मांड सा कुछ चिपचिपाता रहता है। वह बूंद बूंद मेरी आत्मा पर गिर रहा है। मुझे उबकाई आ रही है। शोभा ने एक घूंट चाय और भरा। और तुम उल्टियां करती रहती हो लगातार, कहीं भी किसी भी वक्त। दिन भर में कई बार नहाती हो, साबुनों को, हमाम, लाइफ बॉय, लक्स को बाहर फेंक कर चीखती हो, मुझे चंदन की सुगंध चाहिए। और पृष्ठ 100, तुम कहती हो कि वे लोग तुम्हें बिस्तर नहीं देते, गरम रेत पर सुलाते हैं तुम्हें। वहां एक भयावह राक्षस की परछाई आती है, और जबकि तुम्हारे साथ तुम्हारा मालिक होता है। मालिक? मेरा मालिक? बुदबुदाने लगी प्राची। कितने में बेचा था उसके हाथों पापा ने मुझे। शोभा उसकी ओर देखने लगी, चाय छलक कर गिर पड़ी। शोभा दी ने उसके बालों में स्नेहिल हथेली रखी। प्राची पुरुष स्त्री की देह मन आत्मा का मालिक ही तो होता, स्त्री समर्पण करती है उसे। तुझसे क्या मांगा था? तेरी देह ही ना, उसका हक है। इस पर प्राची, सभी स्त्रियां अपने पति को देह समर्पित करती हैं। प्राची की छाती ऐंठने सी लगी, आंखों के आगे दृश्य घूम गया। वह ख्वाब बुन रही है। पहली रात अचानक आकर कोई उस पर हमला करता है और बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ने लगता है। जानवर सा हिंसक होकर नोचने लगता है उसकी देह। प्रति रात यही होता है, उसके कोमल सपने तार तार हो जाते हैं। एक दिन तूने मालिक की बनियान फाड़ दी, तेरी नाखूनों की खरोंचें उसके चेहरे पर हैं। उसने खुद को बचाने के वास्ते तुझे धक्का दिया, दीवार से लगा तेरा सिर। उसके बाद तू होश में नहीं रही कई दिन तक। प्राची की आंखों में दृश्य सजीव होने लगे। वह एकाएक चीखने लगी, हाँ मैं पागल हूं। मैं माँ घबरा कर दौड़ी आई। प्राची अपने कपड़े फाड़ने लगी, मैं हूं पागल। धुंध के पार उर्फ तूफान के बीच, हमारे बीच कांच की पारदर्शी दीवार थी। पहले पहल जब हम एक दूसरे के आमने सामने थे या कर दिए गए थे, दीवार पर गाढ़ी धुंध थी जमी। हालांकि हम रूबरू थे एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे का चेहरा देखने में असमर्थ। मुझे कुछ लोग यहाँ लाए थे जिन्हें समाज की शब्दावली में प्रियजन कहा जा सकता था। हालांकि वे उतने प्रियजन थे ही नहीं जितना मैं उन्हें अपनी नंगी आंखों से देखने का हौसला जुटाए थी। उनकी खुश पुसाहट मेरी मासूम छाती में खंजर भोंक रही थी। वहां एक छेद था जिससे लगातार खून खून रिस रहा था। उन्हें इसकी जरा सी भी परवाह नहीं थी। वे मुझे समाज के बनाए नियमों को प्रोडक्ट देखना चाह रहे थे, जिसे बनने में पूर्णतया असमर्थ पा रही थी मैं खुद को। और चीखती जा रही थी। यहाँ आने पर तुरंत नर्स ने जाने कैसा इंजेक्शन मुझे दिया, जिससे मेरी चीख और शोर तो बंद हो चुका था, लेकिन अर्ध चेतनावस्था में भी कुछ वाक्य मेरे जेहन में जबरन घुसे चले आ रहे हैं, जिससे मुझे बेहद पीड़ा पहुँच रही थी। प्रभा उठो, रोते नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करो, हमारी बच्ची जल्दी ही हमें मिल जाएगी। वह बहुत दयालु है। पापा का विश्वास भरा स्वर। कांच की दीवार के पार परछाई हिली। आप पेशेंट छोड़ दें या कुछ दिन, मैं संभाल लूंगा। परछाई के विश्वास ने भरपूर स्वर से माँ पापा उठे और बाहर निकल गए। हम फल लेकर आते हैं। शोभा दी मेरे पास बनी थी। उसने सिर हिलाया, मेरी हथेली थाम ली। मैडम आप इन दवाओं को लेकर आ जाएं। दीवार के पीछे से एक हाथ बढ़ा, शोभा दी ने पर्ची थाम ली। शोभा दी आज्ञाकारी बच्चे की मानिंद उठी। मैं यों गई और यों आई। दी ने मेरे कंधे पर स्नेहिल दबाव दिया। मैं सामने नेम प्लेट पढ़ने लगती हूँ, मगर मुझे नेम प्लेट के अक्षर भी धुंधलाए लग रहे हैं। मेरी आवाज़ गले में ही क्यों अटक रही है? हम अकेले हैं इस केबिन में। हरे पर्दे हैं खिड़कियों पर, बाहर कुछ अंदर नहीं आ सकता, अंदर का बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। बंद है सब कुछ, जैसे कोई तहखाना, शांत है पूरा वातावरण, कहीं कोई स्वर नहीं। दीवार के पार वे हैं, एक डॉक्टर जिन्हें मैं देख नहीं सकती। दीवार के इस ओर मैं हूँ, वे मुझे देख नहीं सकते, शायद देख भी रहे हों डॉक्टर के चश्मे से। जिन्हें सब डॉक्टर समझ रहे हैं उन्हें मैं केवल परछाई। अब परछाई वे हैं या मैं? हो सकता है परछाई मैं ही हूँ, कि मैं साबुत बिस्तर पड़ी हूँ और नींद के पंखों से उड़ते इस दुस्वप्न प्रदेश में आ पहुंची हूँ, जहाँ सब मुझे खैर छोड़िए। इनके कहने से होता भी क्या है जब मैं खुद महसूस न करूँ? मुझे तो ये सारी दुनिया ही पागल नजर आती है। जाने दीजिए, इस एक शब्द को कहते हुए कितनी तकलीफ हो रही है मेरी जीभ को। तो मैं क्या सचमुच चीख पुकार मचाती हूँ, अश्लील वाक्य बोलती हूँ? मैं शीशे के पार नजरें झुकाए कुछ लिखती हुई परछाई से पूछना चाहती हूँ। आप तो इस शहर के स्टार डॉक्टर हैं, बताइए क्या मैं चीख सकती हूँ? कहिए क्या इतनी मासूम लड़की अश्लील अनर्गल बोल सकती है?